रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुकशौनक भीष्म दाभ्यान् रुक्मांगदार्जुन विभीषण विस्मरणं परम भागवतां स्मरामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए तिनके पद वंदन किए ना सत विघ्नयने। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए के इसी की भक्तमाल में व्याख्या है। भक्तों का चरित्र जिसमें प्रेमी भक्त होते हैं उनका चरित्र भगवान को बहुत प्यारा लगता है। एक बात आपसे निवेदन करें, महाराज जी का शरीर तो नहीं है पर आज जिस क्रम से बैठने की व्यवस्था हुई है उसमें ऐसा लगता है महाराज जी विराजमान है। ऐसा लग नहीं रहा कि महाराज जी नहीं है। सिद्धांत है ना उनका, ये महाराज जी की सभा ऐसी होती है, आप जानते ही हो कितनी अच्छी व्यवस्था हुई, बहुत अच्छा लग रहा। माताओं बहनों को संकोच होता है, उधर भाई लोग बैठे रहते हैं उधर से कैसे जाए, इधर से भी जाने में संकोच होता है। माताओं बहनों का सबसे बड़ा आभूषण क्या है? संकोच, लज्जा, शर्म, कायदा, ये बहुत बड़ा आभूषण है। इस आभूषण की कोई कीमत नहीं, इतना आभूषण कीमती है। इधर से भी जावे तो भी उनको संकोच हो और उधर से जावे तो भाई लोग बैठे क्या करें, मुश्किल हो। अब कोई कायदा नहीं, और वैसे भी कायदा ही है तो आज ऐसा लगता है जैसे महाराज जी की सभा में बैठे हैं। महाराज जी का सिद्धांत का जो पालन है वही तो महाराज जी का स्वरूप है। नहीं तो शरीर और महाराज जी का शरीर तो हमारा अच्छा था महाराज जी से, महाराज जी को बूढ़े थे, खुराक हमारी अच्छी महाराज जी से, ज्यादा खा सकते थे हम महाराज जी से, जल ज्यादा पी सकते, रोटी ज्यादा खा सकते, नींद ज्यादा ले सकते थे, चल जल्दी सकते थे। और महाराज जी वैसा सिद्धांत का, सिद्धांत के कारण से सिद्धांत का पालन होता है तो महात्मा उस सिद्धांत के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं है। महाराज जी अपने से बाहर नहीं है, सिद्धांत के अनुसार सभा है। बहुत अच्छा सभा, बैठते ही जी में एक बड़ी खुशी आई है और ऐसा लगा कि महाराज जी यहां विराजमान, मानो है नहीं महाराज जी यहां विराजमान है, तभी कैसी सभा मन को प्रसन्न कर रही है। तो संतों का महात्माओं का सिद्धांत उनका स्वरूप होता है। शरीर तो जाता है, जाएगा सभी का ही जाएगा, तो महापुरुष होते हैं वो शरीर थोड़े ही होते हैं, सिद्धांत ही होते हैं। इसलिए ऐसे सिद्धांत के पालन से चित्त में स्वाभाविक शांति, प्रसन्नता और उन महापुरुषों की हम लोगों के ऊपर कृपा बरसती है। तो नाभाजी महाराज कहते हैं कि भगवान के नाम की, भगवान के स्मृति की, भगवान से संबंध करने की एक बड़ी विलक्षण महिमा है। चाहे संसार की दृष्टि से कोई कितना ही योग्य हो जाए, यदि भगवान के साथ संबंध नहीं जुड़ा तो कोई काम का नहीं। तो 12 भक्त प्रधान भक्त माने गए हैं, 12 प्रधान। भागवत में यमराज जी बोलते हैं अपने भक्तों से, कि बारह विशेष भक्त हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर वैयासिकीर वयम अंबारे द्वादशैते बिजानीमो धर्मम भागवतम भटा। उसका अनुवाद करते हुए बोलते हैं नाबाजी, विद नारद शंकर सनकारिक कपिल देव मनुभूप नर हरिदास जनक भीषम बलिशुक मुनि धर्म स्वरूप अंतरंग अनुसर हरिजू के जो इनको यश गावे आदि अंत लो मंगल तिनको श्रोता वक्ता पावे अजामेल प्रसंग यह निर्णय धर्म परम के जान इनकी कृपा और पुनि समुदे द्वादश भक्त प्रधान। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, तो ब्रह्मा जी भागवत में आप सुनते ही हैं, जब भगवान ने सृष्टि के विस्तार की इच्छा की तो भगवान के नाभि में से कमल निकला और उस कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई मैं कौन हूं, इस कमल में से कैसे आया हूं। यूं देखने लगे चारों तरफ देखने, चार मुंह हो गए। देखिए कौन मैं कहा हूं। उनको एक केवल आकाश वायु और जल, तीन के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। एक अपना ही कमल था, कमल पर बैठे हुए। फिर देखा मेरा आधार ये कमल है, कमल का आधार कौन है। तो वे कमल का आधार ढूंढने के लिए कमल के अंदर प्रवेश किए। कमल नाड़ है उसके अंदर गए, कमल की नाड़ होती है। मैं जाता हूं अब ये मैं लगाई है उन्होंने। तो ब्रह्मा जी उसके अंदर गए 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 गए, उसकी कोई था नहीं, कितने ही नीचे जा गए गए, कोई उसकी था नहीं। कितने ही बरस बीत गए, काल बीत गया, काल तो खैर था ही नहीं, तो क्या कहें। ब्रह्मा जी चकित रह गए, इसका अंत नहीं, कमल नाल क्या चीज है। फिर देखा कि मैंने इस कमल को देखा, अपना बल देखा कि मैं इस कमल में, कमल का आधार है, उसको मैं पहचान लूंगा। इतनी खोपड़ी लगाई, क्या फायदा हुआ इससे। इसे तो उस भगवान को याद करो जिन्होंने ये जड़ बनाया, उन भगवान को याद करो जिन्होंने कमल बनाया, उन भगवान को याद करो जिन्होंने मुझे बनाया, उन भगवान को याद करो जिन्होंने आकाश को बनाया। ऐसे में आंख बंद करके हे भगवान, हे भगवान, आप कौन है, आपका रूप मैं समझ नहीं पाया हूं, आपकी अनंत शक्ति है, आपका था नहीं है। ऐसे करके खूब वो भगवान की भक्ति में डूबे तो फिर भगवान ने दर्शन दिया। और भगवान ने दर्शन देकर के कहा कि तू तपस्या कर। फिर वे तपस्या करने लगे, तपस्या करे तो भगवान ने फिर उनको अपना वैकुंठ दिखाया और फिर कहा कि अब तू संसार का निर्माण कर, सृष्टि बना ले। तो कहा हमारा सृष्टि बनाऊंगा तो सही, पर मुझे घमंड हो जाएगा, मुझे घमंड न हो इसका कोई उपाय बताओ। तब उन्होंने चार श्लोक वाली भागवत सुनाई, भगवान ने सत्संग किया, इसका नाम है सत्संग। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप सृष्टि के सबसे पहले जीव हो, सब जीवों के आप प्रतिनिधि हो, आप हमारे प्रतिनिधि हो, सब जीवों के, हमारे तो नहीं, सब जीवों के। मेरे संकल्प में जितने जीव सृष्टि में अब पैदा होंगे उन सब की साल संभाल, उन सब की सुरक्षा वगैरह सब का प्रबंध आपको करना है। ब्रह्मा जी ठीक है, आपका ज्ञान मिल गया, अब क्या नहीं होगा। तो यहां नाभा जी बताते हैं कि जिन जिन को ज्ञान हुआ उन सब ने यही काम किया। ब्रह्मा जी को हुआ, नारद जी हैं, ये नारद जी बड़े विचित्र हैं। नारद जी की बात आती है कि नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तू पैदा तो हो गया लेकिन तू सृष्टि का विस्तार कर। नारद जी ने कहा हम इस पचड़े में नहीं पड़ पाए, हम सृष्टि का विस्तार करें या भगवान श्री कृष्ण की प्रेम में कथाओं को गाएं, सुने सुनाएं। हमको भगवान की कथा में अमृत झरता हुआ दिखता है। नारद जी को समझाया ब्रह्मा जी ने कि देखो बेटा, पिता की आज्ञा का मां पालन करेगा फिर वो कथा कहेगा सुनेगा, उसकी कथा में आनंद का अनुभव होगा। तो कथा के नाम पर पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है, सत्संग के नाम पर अपने से बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करता है, वहां तुझे अमृत नहीं मिलेगा। कहना नहीं, मुझे तो आपकी क्या आज्ञा पालन करनी, सृष्टि इसके चक्कर में कौन पड़े, हमें तो भगवान की सेवा में आनंद होता है। फिर भी बात काट दी। तीसरी बार ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो नारद जी, भगवान की कथा के नाम पर बड़ों की बात काटो मत, बड़ों की अवज्ञा करके तुम कथा का आनंद नहीं ले जाना ही नहीं। मैं तो कृष्ण कथा में लगा हूं, मैं कृष्ण कथा को छोड़ करके कौन ऐसा मूर्ख आदमी होगा जो संसार के निर्माण रूपी जहर में डुबकी लगाए, हमको तो ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि मुझे तो भगवान ने आज्ञा दी सृष्टि विस्तार की, इसको मैं आज्ञा देता हूं, एक तरह से ये भगवान की ही आज्ञा है और इसमें ये आनाकानी करता है, तो शाप दे दिया। नारद जी को शाप दे दिया ब्रह्मा जी कि तू हमारी बात नहीं मानता है तो तेरे को अभी जो ज्ञान हुआ है ना, ये ज्ञान तेरा एक ऐसा समय आएगा लुप्त हो जाएगा और तू स्त्रियों के बीच में पड़ा रहेगा। ऐसे करके शाप दे दिया और 50 स्त्रियों के बीच में पड़ा रहेगा, 50 के बीच। तो अब क्या करें, नारद जी को शाप मिल गया और नारद जी उस समय उपबर्रहण नाम के गंधर्व बने। उपबर्रहण ये तो भागवत में भी आ गया है। तो उपबर्रहण नाम के गंधर्व बने तो उनके पश्चात 50 गंधर्वियां रहती थी। 50 गंधर्वियों के साथ ये नारद जी वहां उपबर्रहण गंधर्वों के रूप में रहते थे। एक बार ब्रह्मा जी का क्षेत्र है पुष्कर, वहां उन्होंने कोई भगवान का आयोजन किया। भगवान का खूब अच्छा आयोजन किया तो देवताओं को बुलाया ब्रह्मा जी ने, और भी सृष्टि के श्रेष्ठ पुरुषों को बुलाया, सब आए। वहां नारद जी भी आ गए। नारद जी आए तो उनके साथ में 50 गंधर्वियां भी आई। नारद जी आकर के वहां पर नाच नार गानार ये करने लगे, कथा में नाच न गाना चालू किया। ब्रह्मा जी ने बोला अरे यहां भगवान की कथा सुन रहे हैं, कथा की बात चल रही है, तू यहां नाचना गाना करता है, जहां शुद्री होनी में चल रहा है, तेरा व्यवहार अच्छा नहीं है। भगवान की कथा में नाचना गाना कूदना ये रजोगुणी गुणातीत, भगवान की कथा में रजोगुण लाना तमोगुण लाना और پھر اپنی قابلیوں کے ساتھ میں آ کر یہاں ناچنا ہی تو اور بھی بھدا کام. ناراض ہو گئے برہما جی نے شاپ دے دی. تو اب کیا کریں؟ تو پھر وہ شودری یونی میں ایک درمل نام کا گوپ تھا. گوپ درمل اس کے گھر میں جنم لیا اور درمل گوپ کی پتنی کا نام تھا کلاوتی. وہاں انہوں نے جنم لیا. نارد جی نے شودری یونی پتی پہلے مر گئے درمل جی. وہ بیچاری داسی ادھر ادھر اپنا لوگوں کے یہاں کام کرتی سیوا کرتی اور آجیوکا چلاتی. ایک بیٹا کیول نارد. تو وہاں ایک سداچاری براہمن تھا. اس کے گھر میں وہ سیوا کا کام کر رہی تھی تو وہاں پر سنت آئے. کئی سنتوں نے کیا چاترماس. چاترماس میں یہ داسی جو ہے وہاں کام کرتے تھے اور نارد جی مہاراج وہاں سنتوں کے بیچ میں رہتے اور سنتوں کے بیچ میں رہ کر انہوں نے بھگوان کرشن کی کتھا سنی. نارد جی نے اپنے مخ سے کہا بھاگوت میں کہ میری بھگوان میں روچی پیدا ہوئی. روچی اب ادھر تو برہما جی کا شاپ لگا ہوا ادھر شودر یونی میں آیا ہوا اور ادھر میرے گھر میں نرواہ کی بڑی کمی. داسی کا کام کر کے اور پیٹ بھرتے اور مہاپرشوں کے دوارا جو وہاں بھوجن کرنے کے بعد بچ جاتا اس بچے ہوئے بھوجن سے میں نرواہ کرتا تھا. ماں پہلے مجھے کھلاتی. مہاپرشوں کی بھکشا آ جاتی بھکشا لے آتے اس میں جو بچ جاتا تو پہلے ماں مجھے کھلاتی بیٹا تو بھی کھا لے. پھر ماں پیٹ بھرتی بچ جائے تو نہیں بچے تو کیا کیا. ایسا میرا پالن کیا ماں نے. تو پر میری بھگوان میں روچی پیدا ہوئی. یہ جو روچی بدلنا ہے سنتوں نے کہا یہ کام تیرا بہت اچھا ہوا. روچی بدل بدل بھگوان ملے نہیں ملے کوئی بات نہیں پر بھگوان میں روچی پیدا ہوگی اب کام پورا ہو جائے گا. سنتوں نے کہا کہ بھگوان کے پرتی آپ کے من میں پریم ہو جائے اتنا کام تو آپ کو کرنا ہے. آگے بھگوان جانے بھگوان کا کام آگے کی ذمہ داری آپ کی ہے ہی نہیں. بھگوان درشن دیوے تو نہیں دیوے تو یہ کریں تو وہ کریں تو بھگوان میں روچی ہو جانی چاہیے. کہتے بھگوان میں روچی تو ہے ہماری کہ روچی تو ہے پر تھوڑی بہت سنسار کی بھی ہے. نارد جی نے کہا کہ میری کھیل میں روچی نہیں تھی اور بھگوان میں روچی تھی. ایک طرف کھیل ایک طرف کتھا. کرشن کی کتھا کہتے تو بچہ تو ہے وہ تو کھیلنے میں روچی رکھتا ہے میری کھیلنے میں روچی نہیں ہوتی. میں سنتوں کے بیچ میں بیٹھتا اور وہ کرشن بھگوان کی بال لیلا سناتے پریم سے سنتا. تو روچی پیدا ہونے سے اتنا پربھاؤ پڑا کہ اس اوستھا میں مجھے بھگوان کے درشن بھی ہوئے. پھر بھگوان نے کہا اگلے جنم میں تم شریشٹھ گیانی بنو گے تو پھر میں نارد بن گیا. یہ کیسے ہوا؟ کیول ستسنگ کے پربھاؤ سے. تو ودھی نارد نارد جی مہاراج کی یہ بات ہے. اور نارد جی کی آگے جا کر کے بڑی بھاری باتیں ہوئی. نارد جی لوگوں کو بھی یہی کہتے ہیں ارے سنسار میں کیوں لگتے ہو بھائی بھگوان میں لگو بھگوان میں لگو بھگوان میں لگو. پرائے نارد جی یہی کام کرتے تھے بھگوان میں لگاتے تھے لوگ. جب وہ برہما جی سے دوبارہ پیدا ہوئے نا تب وہ ایسا ہی کیا. ایک بار کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک براہمن پریوار رہتا تھا. پتی اور پتنی دو ہی تھے کوئی سنتان تو تھی نہیں. براہمن کا نام تھا کرشن دت اور اس کی جو پتنی تھی उसका नाम था सुंदरी। रहते थे नारद जी महाराज ने देखा कि ये ब्राह्मण है तो बड़ा अच्छा, परंतु ये न तो सत्संग करता है, न भगवान का नाम लेता है, न इसकी भगवान में रुचि है, क्या करें। ध्यान से सुनना इसका साथ। तो नारद जी ने देखा कि इनको भगवान में लगा है, अच्छे परिवार, आचरण अच्छा, व्यवहार अच्छा, सब अच्छा, कितनी अच्छाई है, परंतु भगवान में रुचि नहीं तो कुछ नहीं। जैसे मुर्दे के शरीर का श्रृंगार क्या काम का, शरीर में प्राण नहीं है, अब चाहे कितने ही टीके लगाओ, कितने माला पहनाओ, कितने ही उसमें सोने के हार पहनाओ, प्राण नहीं तो क्या है, मुर्दे का श्रृंगार है। ऐसे ही हमारे पास कितनी चीजें हैं, खूब बड़ा राज्य भी है, धन भी है, महिमा भी है, और हमारे पास कई प्रकार की शक्तियां भी है, सब है, लेकिन भगवान में प्रेम नहीं है तो मुर्दे का श्रृंगार है। तो नारद जी ने देखा कि इसको भगवान में कैसे लगाया। तो नारद जी महाराज एक दिन उसके घर पर गए, कोई योग की बात थी कि वो ब्राह्मण तो कहीं बाहर गया हुआ था, केवल ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी ने उसका बड़ा आदर किया। नारद जी का, आओ महाराज, बैठो महाराज, ये करो भोजन पाओ। नारद जी का, नहीं हम भोजन नहीं करेंगे, कि महाराज घर पर पधारे हो, भोजन का समय है, बड़े नम्रता से निवेदन कर रही हूं, और आप यदि बिना भोजन पधारोगे तो मेरे मन में बहुत कष्ट होगा, और संत किसी का कष्ट देख नहीं सकते हैं। नारद जी ने कहा एक शर्त पर भोजन करूं। बोलो तुम कौन से भगवान की पूजा करते हो? भगवान राम की पूजा करते हो कि भगवान कृष्ण की करते हो, कि भगवान शंकर की करते हो, या गणेश की करते हो, किसकी करते हो, या भगवती की करते हो, किसी न किसी की तो पूजा करते होंगे ना। महाराज सुबह जल्दी उठती हूं, घर के कामकाज में लग जाती हूं, और ब्राह्मण देवता है वो इधर उधर से कुछ अपना मांग कांग करके यायावर वृत्ति से निर्वाह करते हैं। अरे ब्राह्मण हो, भिक्षा से निर्वाह करते हो और फिर भी भजन नहीं करते, फिर भी तुम लोग भगवान को नहीं मानते, कोई तुम्हारे यहां भगवान की पूजा नहीं, तुम्हारी कहीं संतों के साथ सत्संग हुई क्या? महाराज हम जानते ही नहीं संत क्या होते हैं, हम जानते ही नहीं सत्संग क्या होता है। अच्छा तुमको ये पता है कि नहीं कि एक दिन मरना पड़ेगा? ये तो जानते हो, ये तो महाराज सभी जानते हैं, मरना तो पड़ेगा। अच्छा ये जानते हो नहीं, यहां गिनती के दिन है, तो ये भी जानते हैं, तो फिर भगवान का भजन करो यहां पर, यही यहीं यही कि क्यों विचार करते हो? क्या महाराज अब आप कहो वैसा करें, आप भोजन करो। भोजन कब करें? जब तुम पहले इस बात को स्वीकार करो कि आज से मैं भगवान की पूजा करूंगी, और अच्छे संत महापुरुष होंगे उनका सत्संग करूंगी, और मंत्र देव महाराज को मैं आपको अपना गुरु मानती हूं, मंत्र देव, मंत्र है भगवान का नाम, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। महामंत्र जोई जपत महेश, ये महामंत्र है, महामंत्र राम नाम। ठीक है महाराज, तो देखो हमने तुमको मंत्र भी दे दिया, हमने तुमको पूजा भी बता दी, अब एक नियम और करो, किसी के भी घर जाओ तो जिसने कभी संतों का संग नहीं किया है, जिसने कभी भगवान को अपने घर में पूजा नहीं है, जो भगवान का नाम नहीं लेता है, उसके घर भोजन मत करना, और उसके घर की भिक्षा भी मत लेना, और उसका छुआ हुआ कोई पदार्थ भी मत लेना, वो अपवित्र है। क्या ठीक है महाराज, नियम का पालन करूंगा। और भी नारद जी ने बता दिए, सुबह उठते ही बैठ करके, बिस्तर पर बैठ करके भी सबसे पहले भगवान के स्वरूप का ध्यान करूं। क्या महाराज कैसे करूं? ऐसे आंख बंद करके, जो भी स्वरूप अच्छा लगे, राम जी का स्वरूप बताया, कृष्ण का स्वरूप बताया, शिव जी का स्वरूप बताया, क्या ठीक है महाराज, मेरे समझ में आ गया मुझे कौन से स्वरूप का ध्यान करना है, समझ में आ गया मुझे राम रूप का ध्यान करना, बस बहुत अच्छा राम जी के स्वरूप का ध्यान करना। और मंत्र राम जी का आपने दे ही दिया, राम राम करेंगे और सत्संग करेंगे। और जाते जाते नारद जी ने कहा कि देखो एक बात और कह दूं कि तुम अब अपना संबंध भगवान के साथ, मेरा भगवान से संबंध है, मैं भगवान की भी बस। नारद जी की बात मान ली, नारद जी ने कहा अब भोजन कर लेंगे। बड़ी श्रद्धा से उसने भोजन कराया। अब तो उसके मन में भाव आया कि देखो नारद जी को कोई भूख थोड़ी लगी थी, नारद जी को भूख तो यही लगी है कि हम लोग भगवान में लगे, इनकी कोई अन्न की भूख थोड़ी है। बहुत श्रद्धा से भोजन कराया उस ब्राह्मणी ने। नारद जी विदा हो गए, थोड़ी देर में ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने आते कहा भयंकर गर्मी है, जल पिलाओ, मैं जाके खुद जल पिला, नहीं मेरे पात्र को मत छूना, मेरे पात्र को मत छूना, मैं अपना आप जल दे दूंगा। तो मेरे पात्र को मत छूना, मैं कोई अछूत थोड़ा ही क्या, नहीं मत छूना मेरे पात्र। उसने क्या एक गिलास ऊपर से जल दे दिया उसको, जैसे अछूत को दिया जाए ऐसे दे दिया, पी लो। ये क्या करती हो, इतनी दूर से मैं आया हूं भयंकर गर्मी में और तुझे सम्मान पूर्वक जल देना ही नहीं आता, रोज बड़े सम्मान से जल देती, आज क्या हो गया, आप जल पियो तो पी लो, मैं इस पात्र को फिर मांजूंगी, इस पात्र को मांजूंगी, क्योंकि आपने भगवान से संबंध नहीं किया, आपने सत्संग नहीं किया, आपने भजन नहीं किया, आप किसी संत से दीक्षा नहीं लिए, इसलिए आप अपवित्र हैं। और मुझे नारद जी ने कहा है कि कोई ऐसा अपवित्र उसके छूना नहीं, उसके वस्तु को भी मत छूना। कि नारद जी को मेरे घर में ही पंचायती करने की क्या जरूरत, देखो आप कुछ नहीं कहोगे, नारद जी को मैंने गुरु माना है, उन्होंने मुझे भगवान की बात बताई है, उनकी कृपा से मुझे बड़ी शांति मिली है, कि एक ही दिन में शांति मिल गई, बड़ी शांति मिली, मेरे मन में ये भाव हो गया कि मैं भगवान से जुड़ी हुई हूं, मैं कोई मामूली थोड़ी हूं, भगवान से जुड़ी हुई। इतने में नारद जी आ गए वापिस, वहां पर हो रहा था कलह, कलह हो रहा था, तो नारद जी आए तो ब्राह्मणी ने कहा महाराज हमारे घर में कलह हो रही है, बात बात के ऊपर ही चिढ़ते हैं, हमने इनको जल के लिए कहा, हम भोजन इनको अलग बना के देते हैं, और उनको कह दिया तुम्हारे भोजन करने के बाद तुम्हारे बर्तन वगैरह मांज मूंज करके मेरे चौके को मैं साफ करके फिर दोबारा भोजन करके करूंगी, इनका अलग बना देती हूँ, मेरा अलग रखती हूँ। ब्राह्मण ने कहा ये आपने क्या शिक्षा दी इसको, ये मेरे से ऐसा बर्ताव करती जैसे कोई अछूत आदमी के साथ करते हो, मैं कोई अछूत थोड़ा ही, हमारे घर में आपने कलह डाल दी। नारद जी ने कहा सुनाना उतना सुना दे फिर मेरी बात सुन लेना, ये क्या सुन लेना, मेरे घर को बिगाड़ दिया आपने, हमने सुना है रामायण में न जाने कितने कितनों का घर बिगाड़ दिया, ये सुन लिया ना। तो ब्राह्मणी से कहा ब्राह्मणी तुम इसको हाथ में गिलास क्यों नहीं पकड़ा देती कि महाराज मैं छूंगी नहीं, और तुम भोजन करा करके इतना अछूत बर्ताव क्यों करोगे महाराज, में तो कायदा है गाय है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। अब उसने कहा महाराज मुझे भगवान की सेवा में आनंद आता है, नाम में आनंद आता है, ध्यान में आनंद आता है। ऐसे करके वो ऐसे बोलने लगी, ब्राह्मण ने देखा कि नारद जी इसके पक्ष में है और इसके इसको इतना आनंद का अनुभव होता है, तो ब्राह्मण का हृदय बदल गया। ब्राह्मण ने जाकर के नारद जी के पैर पकड़ लिए, महाराज पीछे जो कुछ हुआ उसको तो खत्म करो, मुझे भी दीक्षा दे, मैं भी आपका चेला बन जाऊं, मुझे भी ध्यान की बात जो मेरी पत्नी को आपने दिया उपदेश वो मेरे को भी दे। नारद जी कुछ देर ही बैठ के सोच के कहे जाओ स्नान करके आओ, पवित्र होकर के आओ, फिर मैं तुमको दीक्षा दूंगा, मंत्र दूंगा, नाम दूंगा, सत्संग की बात सुनाऊंगा, पहले नहा के आओ स्नान करके आओ। अब सुनिए आप, स्नान करने के लिए गया नदी के किनारे, बड़ी जल्दी जल्दी से जा रहा था। उस ब्राह्मण के लोगों ने पूछा, मित्रों ने, अरे भैया आज कृष्ण दत्त बहुत जल्दी जल्दी जा रहे हो, क्या बात है? अरे क्या क्या बात है, जल्दी नहाऊं, नमनारद आए हुए हैं और उनसे मुझे दीक्षा लेनी है, वो मुझे भगवान का नाम सुनाएंगे, भगवान का साथ संबंध करेंगे। नारद और आज तुम्हारा भगवान से संबंध करेंगे? अरे सुन तो सही ब्राह्मण, अरे कहां किसकी बात में आ गए, क्या बात में आ गए, मेरी स्त्री को उन्होंने मंत्र दिया, मैं तो बाहर गया हुआ था, पीछे ऐसा सुंदर मंत्र दिया, मेरी स्त्री थोड़ी थोड़ी देर में आनंद में डूब जाती है, कहती मेरा भगवान से संबंध हो गया, भगवान से संबंध हो गया, उसका स्वभाव ही कुछ और हो गया, तो मैं देखता हूं मैं भी मेरा स्वभाव बदलू। तुझे पता है कि नहीं अभी ये आसूस का महीना है और वो भी पितृपक्ष है, श्राद्ध का पक्ष है, ये श्राद्ध के 15 दिन है, इसमें कोई भगवान के साथ संबंध करना, दीक्षा करना, सत्संग करना, कथा करना, ये बिल्कुल काम करना ही नहीं चाहिए, तुम ब्राह्मण होकर के लिए काम करते हो। रुक गया, अरे ये काम तो बड़ा, अरे कोई भी काम होता है अच्छे से अच्छा काम होता है वो भी श्राद्ध के दिनों में थोड़ी करते हैं लोग, इसलिए भगवान के साथ संबंध हो ये तो और भी पुनीत काम है, बहुत ऊंचा काम है, इस काम को तुम श्राद्ध के दिनों में करोगे, श्राद्ध के दिनों में नहीं करते, बाद में करना, अच्छा मुहूर्त हो, अच्छा करण हो, अच्छा योग हो, पंचांग है ना, वार तिथि करण योग ये सब देख करके फिर दिया जाए, ये चीज बड़ा अच्छा, ऐसा नहीं ले जाता, मत लेना नाम दीक्षा मत लेना। इधर बेचारे नारद जी प्रतीक्षा करें, वो घरवाली प्रतीक्षा करे कि मेरे पति आज दीक्षा लेंगे शुद्ध हो जाएंगे, दीक्षा लेंगे शुद्ध हो जाएंगे, मैं निहाल हो जाऊंगा। सज्जनों इन माताओं बहनों को क्या बताएं, कितना इन माताओं बहनों का हृदय होता है, अपने पति की उन्नति देख करके हर्षित होती है। इतना पुरुष नहीं होता, पुरुष पत्नी की बहुत उन्नति देख करके खुश नहीं होता जितनी ये माताएं बहनें खुश होती हैं। कोई भी पत्नी अपने पति की भगवान में भक्ति देखती है तो खुश होती है, अपनी भक्ति से इतनी खुश नहीं होती जितने पति की भक्ति से खुश होती है। सैकड़ों सत्संगी ऐसे मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम हमारी धर्म पत्नी के कारण से सत्संग में लगे, नहीं तो हम भगवान भगवान को मानते नहीं थे, पर इसके कारण से हम सत्संग में लगे। कितना ऊंचा भाव होता है आप लोगों का, माताओं का, वो बेचारी प्रतीक्षा कर रही है, अब आए इतनी देर भी आए, अब उसने कोई एक की थोड़ी सुनी थी, मिले जो यही कहे, मिले जो यही कहे, मिले जो यही कहे, क्या श्राद्ध पक्ष में सुन, उसकी जच गई बात, वो नहा धो करके तो आया, आकर के नारद जी लगाओ आओ दीक्षा दे रहे हम, नहीं ये अभी श्राद्ध पक्ष चलता है, श्राद्ध पक्ष में दीक्षा नहीं लेंगे हम। नारद जी ने कहा कि संसार के काम संसार के दिनों में अच्छे बुरे देखे जाते हैं, भगवान के काम में कभी कोई दिन हल्का होता ही नहीं। रामचरितमानस में आया ना कि बढ़िया दिन कौन सा है कि जिस दिन राम जी का राज्याभिषेक होगा, साहब राम जी का अभिषेक का मुहूर्त बताओ। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि जिस दिन राम जी राजगद्दी पर बैठेंगे वही दिन अच्छा है। ऐसे ही आप जिस दिन भगवान के नाम की दीक्षा ले लोगे, भगवान से जुड़ जाओगे, ब्राह्मण देवता, वही दिन अच्छा है। आप क्यों ये पितृपक्ष के चक्कर में पड़ेंगे, नहीं मैं तो नहीं लूंगा, आगे देखा जाएगा। आगे मैंने ब्राह्मण से पूछा है अक्षय नवमी आएगी, अक्षय नवमी जैसे आखा तीज होती है ऐसे आखा नवमी होती है। अक्षय नवमी कौन सी होती है, काती सुदी नवमी और बैसाख सुदी तीज होती है, वो आखा तीज होती है, ये अक्षय नवमी होती है, अक्षय तृतीया होती है। तो मैंने मुहूर्त देख लिया है। नारद जी ने कहा भाई ये मुहूर्त देखने का काम नहीं होता, नहीं सर मैंने तो ये देख लिया मुहूर्त। नारद जी बिचारे चले गए, अब चले गए। कुछ दिनों के बाद जब कातिसुदी नवमी की बात आई ना, तो कातिसुदी नवमी के दिन वहां पहुंचे घर पर, कौन नारद जी। नारद जी ने कहा घर तो बंद है, इसमें तो कोई रहता ही नहीं। नारद जी ने अड़ोस पड़ोस वालों से पूछा कि भाई यहां पर एक परिवार रहता था, पति पत्नी दोनों ही नहीं, कि नहीं है साहब, क्या होगा, दोनों ही चले गए। चले गए उनका शरीर चला गया। नारद जी ने कहा बड़ा गजब हो गया, एक ने तो भगवान के साथ संबंध किया, एक ने भगवान से संबंध नहीं किया, नाम नहीं लिया, सत्संग नहीं किया, कहां गए होंगे। यूं नारद जी ने ध्यान लगाया तो अपने विद्या से नारद जी ने पहचान लिया कि वो जो स्त्री है वो एक राजा की राजकुमारी है, राजकुमारी के रूप में जन्म लिया है और इसका जो पति था जिसने नाम की दीक्षा नहीं ली वो उसी राजा के यहां हाथी बना हुआ है। वो एक ही गांव एक ही जगह वो तो राजकुमारी बना है और उसने वहां आकर के हथनी के गर्भ से जन्म लिया है और हाथी बना है। ठीक समय निकल गया, एक दिन उस राजा के यहां नारद जी गए, राजकुमारी आई, संतों का सत्कार करती थी, राजा ने भी सत्कार किया, पूजा की और की, संतों का जैसी आव भगत होती कि वो राजकुमारी देखे नारद जी, राजकुमारी को पता नहीं कि नारद जी है कौन है क्या है, संतों का आदर बस ठीक स्वभाव था उसका, वो पिछले जन्म का नारद जी को पता था कि वही ब्राह्मणी है। नारद जी उसने गौर से देखने गौर से देखे ना, तो गौर से देखने पर नारद जी की दृष्टि का उस पर प्रभाव पड़ा, प्रभाव पड़ा, वो जानने लगे चक्कर खाने महाराज आप नारद जी हो, आपकी दृष्टि का मेरे पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैं पिछले जन्म की बात जान गई हूं। ओ नारद जी महाराज बड़ी कृपा की आप, बड़ी कृपा। नारद जी मुस्कुराए, नारद जी ने राजा से कहा राजन आपके यहाँ हाथी लोग काम बनते हैं वो जरा बताओ ना, हाथी काम बनते हैं वहां हमको ले चलो, अभी ले चलो। राजकुमारी भी साथ में, राजकुमारी को भी पता नहीं कि हाथी वो पिछले जन्म का मेरा पति है कि ये हाथी है। अच्छा, नारद जी उस हाथी को यूं देखने लगे, हाथी पहले तो करने लगा, सुसुड़ार करने लगा, अपरिचित व्यक्ति के सामने जैसा करता है हाथी। लेकिन नारद जी देखने लगे, जैसे राजकुमारी को देखा ऐसे उसको भी गौर से देखे, गौर से देखे तो फिर हाथी अपने आप ही सूंड से नारद जी के चरण छूता है। और ये बैठ जाता है उनके पास और उसके आंखों से पानी आता है। नारद जी समझ गए, इधर राजकुमारी इधर हाथी, दोनों के बीच में नारद जी थे ना, राजकुमारी को भी देखे यूं दोनों को देखे, तो राजकुमारी को ज्ञान हो गया ये मेरे पति हैं। राजा को अभी कुछ पता नहीं, ये बातें तो सब अपने आप ही मन में जानते थे। नारद जी चले गए, अब राजकुमारी विवाह के योग्य हो गई। विवाह के योग्य होने पर स्वयंवर रचा, स्वयंवर में बहुत बड़े बड़े राजकुमार वगैरह आए हुए थे। नारद जी को पता चला कि उस लड़की का स्वयंवर हो रहा है, नारद जी वहां पर पहुंच गए। नारद जी वहां पहुंचे तो नारद जी ने कहा, राजा जी आज लड़की का स्वयंवर करती हो, कर रहे हो, ये लड़की स्वयंवर करेगी, करेगी साथ, बहुत अच्छा है। देश देशांतर के हमारे अच्छे अच्छे राजकुमार आए हैं, बड़े परम वीर हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़ी राजधानियां हैं उनकी। नारद जी ने कहा, एक काम हमारे करने से भी करो कि जिस समय स्वयंवर हो उस समय हाथी को वहां रखना। क्यों महाराज, हाथी को क्यों रखना? अरे गणेश जी का पूजन करते हैं ना, गणेश जी मांगलिक है ना, हाथी का ही तो मुख है। आपके यहां इतना अच्छा हाथी, आप हाथी को ला करके जरूर रखना, मांगलिक का। राजा को क्या पता, राजा ने कहा अच्छी बात। अब वो स्वयंवर वाली रानी जाते हैं, राजकुमारी जाते जाते हाथी के गले में माला डाल, तो सब लोग हंसने लगे, ये देखो ऐसी राजकुमारी, बड़ा अच्छा हुआ बाबा ऐसी मूर्ख राजकुमारी, हमारे भी गले में डाल देती तो उम्र भर इस मूर्ख को लेके क्या करते हम। सब राजकुमारों में नाराज होकर चले गए। राजा को बड़ी तकलीफ हुई। राजा ने कहा, अरे मूर्ख नहीं है मेरी राजकुमारी, मूर्ख नहीं है, ठीक है आज का स्वयंवर तो हम कैंसिल करते हैं, दोबारा स्वयंवर करेंगे। बेटी तुमने उसके हाथी के गले में माला क्यों डाली? पिताजी आपने स्वयंवर कहा है ना, वर का वरण तो मैं करूंगी ना, मैं स्वयं करूंगी, ये आपने मुझे अधिकार दिया है ना, दिया है तो स्वयंवर तो वही होता है जहां पर राजकुमारी या लड़की अपनी तरफ से वरण करे, तो मैंने इसका वरण किया है। नहीं नहीं, मूर्खता होती है इससे, इतनी अच्छी समझदार राजकुमारी होकर ऐसी मूर्खता आगे मत कर। फिर स्वयंवर रचा, फिर नारद जी आए, फिर वही हाथी रखा, फिर उसने जयमाला पहनाई। जयमाला पहनाई, पहनाते ही हाथी के सिर पर हाथ रखते हुए नारद जी ने कहा, हाथी अब तो तू भगवान की दीक्षा ले ले मेरे से, अब तो तू नाम सुन ले मेरे से, तो हाथी ने माथा टिकाया, नारद जी के चरण छुए, नारद जी ने उसके कान के अंदर नाम सुनाया। नाम सुनते ही वो हाथी बड़ा सुंदर राजकुमार बनकर के प्रकट हो गया। वो सुंदर राजकुमार हुआ तो अब लोग सब आश्चर्य करने लगे कि महाराज जी क्या बात है। तब नारद जी का, अरे ये पिछली बात है, पिछले जन्म की बात है, ये कितना, ये हाथी क्यों बना महाराज? हाथी इसलिए बना कि इसने भगवान की दीक्षा के लिए इतनी मोटी बुद्धि से विचार किया कि अभी तो पितृपक्ष है, अभी तो क्या भगवान के साथ संबंध करे। भगवान के साथ संबंध करने में घड़ी पंचांग देखना ही नहीं चाहिए, बस जो ही भाव आए तो भगवान के साथ संबंध कर लेना चाहिए। इस प्रकार की बात थी नारद जी की। विधि नारद शंकर, शंकर भगवान की तो भाई लीला ही बड़ी विचित्र है। जहर पिया ये तो आप सभी जानते हो, राम नाम के ऊपर जहर पिया उन्होंने। भगवान शंकर ने जहर किस लिए पिया? ये जहर मुझे इसलिए नहीं मार सकता कि मेरे अंदर राम नाम रूपी अमृत पड़ा है, अमृत का महान सागर, उसमें जहर क्या काम करेगा। अलौकिक अमृत के सामने ये लौकिक जहर क्या करेगा? ये तो लौकिक जहर है और मेरे पास अलौकिक अमृत है, राम नाम अमृतम। उन्होंने जहर पी लिया और इसी कारण से भगवान राम के सेवक स्वामी सखा सी पी के ये थे भगवान शंकर। इस रूप में अब भगवान शंकर की सती जी की कथा भी प्राय सबको मालूम है। कितने भगवान शंकर नाम के प्रेमी थे। एक बार पार्वती जी और शंकर जी जा रहे थे, चलते चलते अकस्मात नंदी को रोका, बैल को रोका और नीचे उतरे कौन? शंकर भगवान। और एक टीला था, टीला, उस टीले को प्रणाम किया। पार्वती से, पार्वती जी ने पूछा, महाराज यहां तो कोई है ही नहीं, न मूर्ति है, न मंदिर है, न कोई संत है, न ऋषि है, न मुनि है, न देवता है, कोई नहीं है, आपने किसको प्रणाम किया? नारद जी ने कहा, देवी यहां 10,000 वर्ष पहले एक संत हुए थे, उन संतों को मैंने प्रणाम किया है। 10,000 वर्ष पहले हुए थे तो वो तो हो गए, 10,000 वर्ष पहले हो गए, अब क्या करते हैं? तो उनका परमाणु रहता है, संत तो शरीर से जाते हैं। संतों का मरना और हमारा मरना एक जैसा नहीं होता है। हम तो यहां से जाने कितनी कितनी चीजें, चीजों पर डाका डाल के मरते हैं। ये डाका डालना ही है, जो चीज हमारी नहीं उसको हमारा मानना। संसार की चीज है, संसार को ही सौंप करके जाना, ये तो है संतपना। और संसार की चीज है अपने मानिए, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरी मेरा परिवार, मेरी वस्तु, ये करके मरना, ये डाका डाल के मरना। तो संत होते हैं वो मरते नहीं हैं, वो अपने शरीर को अदृश्य करते हैं, साधना के रूप में वो आज भी विराजमान है। इसलिए मैंने प्रणाम किया। बहुत अच्छा। आगे चले तो एक और कोई जगह आई, वहां उतरे और उस जगह को प्रणाम किया कि महाराज यहां क्यों प्रणाम किया कि यहां 10,000 वर्ष के बाद एक संत आएगा और यहां रहेगा, इससे पहले ही प्रणाम कर दिया। जहां संत आएंगे उस स्थान को प्रणाम और जहां संत रह गए उसको प्रणाम। पार्वती जी के मन में संतों के प्रति एक अगाध श्रद्धा पैदा हुई। रोज भगवान शंकर पार्वती जी को संतों की महिमा सुनाते थे। ध्यान से सुनना देखो, बड़ी विचित्र कथा है। संत महिमा सुनते 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 की पर भगवान शंकर तो कभी कहते हैं कि देखो संत होते हैं ना वो जनता का बिगड़ा हुआ काम सुधारते हैं। अनादिकाल से जीव की आप बिगड़ी हुई रहती है बात भगवान को है ही असत प्रभु हृदय असत अविकारी पर सकल जीव जग हो दुखारी सबके अंदर भगवान है सबके घट घट में व्यापक है लेकिन सब लोग दुखी है। तो जो काम भगवान नहीं कर सकते वो काम संत करते हैं। ऐसे संतों की महिमा सुनते 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 पार्वती के मन में संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा हुई। एक दिन क्या किया पार्वती जी ने बिना पति से पूछे हुए भगवान शंकर से पूछे बिना अगस्त ऋषि को भोजन के लिए बुला लिया। अगस्त ऋषि क्या महाराज कल हमारे यहां भोजन करना था। अगस्त ऋषि ने देखा कि पार्वती जी के यहां भोजन पवित्र आत्माओं के लिए पवित्र घरों का अन्न मिल जाए संत उससे बढ़कर और क्या चाहता है। पार्वती जैसी पतिव्रता पार्वती जैसी भगवान शंकर की पत्नी अन्नपूर्णा उसका अन्न मिल जाए बहुत भाग्यशाली। वो तो यूं आनंदित हो गए पार्वती जी ने देखा कि अपने आप भोजन करेंगे संत। पार्वती ने आकर शिव जी से कहा कि महाराज कल अगस्त ऋषि आएंगे भोजन के लिए हमें निमंत्रण दे दिया। अरे तेरे को अगस्त ऋषि दिखाई दी कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया क्यों अगस्त जी संत नहीं है क्या। अरे संत तो है पर अगस्त ऋषि को भोजन कराना बड़ा मुश्किल है। अब पार्वती जी को थोड़ा एक मीठा अहंकार होगा मीठा अहंकार हम लोगों के जैसा नहीं है। बड़े पुरुषों का अहंकार मीठा अहंकार होता है माने दूसरों को बताने के लिए अहंकार की लीला करते हैं। पार्वती जी ने मन में सोचा मैं अन्नपूर्णा हूं मेरे यहां कोई चीज की कमी नहीं है कितना ही कोई खाए मेरे पास अन्नपूर्णा हूं मैं सारे संसार के प्राणियों को भोजन कराती हूं। अगस्त ऋषि पर ये आश्चर्य करते हैं कि अगस्त ऋषि को भोजन करा लोगे क्या क्या करेंगे। अगस्त ऋषि आ गए भगवान शंकर ने आने से पहले कह दिया देखो आज तुमने अगस्त ऋषि को बुलाया है तुमको भोजन कराना बहुत भारी होगा। पार्वती जी ने कहा होगा तो होगा मैं क्या करूं अब उनको वापस कहूंगा कि मेरे यहां भोजन नहीं करना कि कहने में कोई हर्जा नहीं है कि मैं तो नहीं कहूंगी। अब एक बार किसी को कह दिया कि भोजन करने आओ फिर दोबारा कहूंगी भोजन नहीं करूं नहीं करें भोजन करने मत आओ ये कोई सभ्यता थोड़ी है। बड़ा शंकर भगवान ने कहा अच्छी बात है। भगवान शंकर अपने अलग कमरे में बैठ गए अलग जगह बैठ गए खूब राम 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 करने लगे। अब आए अगस्त ऋषि समय पर भगवान शंकर ने पहले ही कह दिया था कि तुझे अगस्त ऋषि के विषय में मालूम है कि नहीं ये सात समुद्र को चुल्लू भर में पी गए थे वो अगस्त है ये सात समुद्र का चुल्लू बढ़ा लिया हुआ ये वो अगस्त है। लेकिन आपको बताया ना पार्वती ने मैं तो अन्नपूर्णा हूं सारे अन्न की अधिष्ठात्री देवता हूं मेरे यहां क्या कमी है परवाही नहीं की। भगवान शंकर अपने अलग हो गए अच्छा बाबा तुम जानो और तुम्हारे मेहमान जाने हम हमारे अलग रहने की अलग से। अब साहब वहां पर पदार्थ खाने के पदार्थों के खूब ढीगले लगा दिए। पार्वती जी की कई सहेलियां थी उन सहेलियों को बुलाया कि देखो आज अगस्त ऋषि भोजन करेंगे उनको पुरस्कारी करने में कोई चीज की कमी नहीं रह जाएगी। क्या ठीक है अब लड्डू जलेबी और भी साफ चीजें लाला के रखे अगस्त ऋषि छबड़ा भर के लाए साफ, छबड़ा आए साफ, छबड़ा भर गया साफ, तो फिर उनके सामने बहुत बड़े बड़े ढेर कर दिए, एक साथ ढेर कर दिए। अगस्त ऋषि ने कहा कि देखो आप लोग मुझे तृप्त कब कर सकोगे, जब या तो मैं कह दूंगा कि बस ठीक है अब मैं भोजन नहीं करता, तब एक क्षण भी यदि आपने देरी की तो मेरी तो भूख खत्म नहीं होगी, भूखा रह जाऊंगा। और निमंत्रण दिए हुए को भूखा रखना ये अपराध हो जाएगा। अब वो कुंडा का कुंडा पूरे, छबड़ा का छबड़ा पूरे खत्म करते 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 खूब ना ढीग रख दी। अब यूं थोड़ी खा देते वो हमारी तरह से, अगर से वो जो भी सामान होता सीधा चलता जाए, सुसारे से सारा सामान चला जाए। अब पार्वती जी घबराई नहीं, पार्वती जी की कहे कि कोई बाबा मैं पहाड़ का पहाड़ भी बढ़ा दूं तो भी तो एक फुकारे में सब ले लेता है। पार्वती जी घबरा गई अंदर से, भगवान को याद किया, हे भगवान मेरी लाज बचाओ, लाज बचाओ, लाज बचाओ। उसी समय भगवान विष्णु एक छोटा ब्रह्मचारी बनकर के आया, मैया मुझे भिक्षा दो, मैं बहुत भूखा हूं। अब पार्वती को पता नहीं कि भगवान विष्णु है। पार्वती ने कहा कि आगे हाथ एक उधर सटिया को नहीं दूसरा और आएगी रही। तो पार्वती जी, मैया मुझे भिक्षा दो, भगवती भिक्षा दे, बहुत भूखा हूं, आपकी बड़ी आशा लेकर आया हूं। तो इधर पुरुषने में एक क्षण की भी देरी होगी तो इधर नाराज हो जाएंगे। अब उसको पुरुषने कहे लिए भी जाना है तो तत्काल वहां तो पदार्थ रख के थोड़ा सा सामान लेकर के हम तुमको भिक्षा दे, नहीं 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 हम ऐसे वैसे चलते फिरते मंगते थोड़ा ही, हम तो बैठ के भोजन करेंगे, बैठ के भोजन करेंगे तो और ही मुश्किल होगी। कि नहीं हम ऐसे नहीं, हम तो बैठ के भोजन, या तुम ले लो ना थोड़ा सा ना, हम तो बैठ के भोजन करेंगे। अच्छी बात, पास में आसन लगा दिया अगस्त ऋषि के, अगस्त ऋषि के यहां आसन लगा दिया। अब अगस्त ऋषि लोग अपना लगा रहे हैं भोग पहले से ही, और इनके सामने रखा, इन्होंने भी थोड़ी सी वस्तु ली और जल्दी से चढ़ू कर लिया भगवान विष्णु ने। अब चढ़ू नहीं की जाती हमारे साधुओं में, देख लो पूरी पंक्ति जब हो जाती है ना, पूरी पंक्ति, तब उसके बाद हरिहर बोलते हैं, राम महाराज बोलते हैं कि राम महाराज, ऐसा नहीं खाने वाले खाओ, सब की एकता होती है तब भोजन किया जाता है। यहां वो ब्रह्मचारी जो पहले ही भोजन कर ली, ओ आचमन कर लिया, आचमन करते अगस्त ऋषि बिगड़ गए, ये तुमने पहले आचमन क्यों किया, आचमन करने के बाद भोजन किया जाता है वो तो उच्छिष्ट होता है, अब ये सारा उच्छिष्ट हो गया, मैं तो भोजन नहीं कर सकता, अब मैं कैसे भोजन करूंगा। भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान कहा मेरा पेट भर गया, मेरा पेट छोटा सा तो मैंने आचमन कर लिया। पार्वती जी ने कहा जी आपने इतना जल्दी आचमन क्यों किया, ये तो बहुत खाने वाले हैं, मैं इतना खाने वाला थोड़ा ही नहीं, इनके कोई खाने की सीमा होती है, इनको मैं कहां तक प्रतीक्षा करता, मुझे आगे भी कई जगह जाना है, मैं एक जगह थोड़ी रहता हूं, मुझे कई जगह जाना पड़ता है। तो अब अगस्त जी को संकोच हुआ कि अब मेरे को बहुत खाने वाला भी बता दिया और भी कई बातें बता दी, और एक बात और कही थी ब्रह्मचारी जी ने, कही कि देखो माता जी, मनुष्य को भोजन कम करना चाहिए, उसमें भगवान में भजन में मन लगता है, खूब खा लेते हैं फिर बाद में मन नहीं लगता है, खाने ही खाने की तरफ वृत्ति जाती है, थोड़ा खाना चाहिए और भजन ज्यादा करना चाहिए, ज्यादा खाने से भजन नहीं होता, भजन में बाधा पड़ती है, आलस्य होता है, प्रमाद होता है, नींद आती है, इसलिए ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। और हम तो वैसे ही भूखे थोड़ा ही है, ऐसे कर दे। अगस्त जी को शर्म आई, शर्म तो आई पर अगस्त जी थोड़े भूखे थे। अगस्त जी ने क्या, जो खावे तो भूख बढ़े उनकी, अपने तो खावे तो भूख, जितना खावे उतनी भूख कम हो, जितना खावे उतनी भूख बढ़े। तो अगस्त जी ने ब्रह्मचारी को गौर से देखा, ऐसा कौन सा ब्रह्मचारी आ गया जो मेरे खाने को आज इतना भूलता है। देखने लगा भगवान मुस्कुराए, ब्रह्मचारी भगवान मुस्कुराए और अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। केवल 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 अगस्त जी को, अगस्त जी देखे, साक्षात भगवान आए, बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। भगवान ने इशारा कर दिया अगस्त जी को। अब देखो, भगवान जिसको रूप दिखाते हैं ना, उसी को ही दिखाते हैं, दूसरे को नहीं दिखाते। अभी आप लोग इतने बैठे हैं, हम लोग सभी बैठे हैं, किसी को भगवान दर्शन देवे तो दूसरों को भी दर्शन होंगे, नहीं हो सकेंगे। सो जाने जी दे जनाई, आप में से किसी को भी दर्शन देंगे तो पास वाले को पता ही नहीं है कि क्या कुछ हुआ है क्या। कुछ पता नहीं होता है ऐसा। बिल्कुल सत्य घटना है, एकदम सत्य घटना, ऐसा होता है। क्या सभा में कहना अच्छा नहीं है, होता है ऐसा। बिल्कुल सत्य 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 बात है। शास्त्रों की, महात्माओं की कई भी बात, उसमें कोई असत्यता की बात ही नहीं। तो भगवान ने इशारा कर दिया, अगस्त जी समझ गए और फिर अगस्त जी चले गए। अगस्त जी के चले जाने के बाद उधर से भगवान शंकर आए, कहने लगे, पार्वती जी क्या हुआ कि आपके नाम जप के प्रभाव से आज मैं संकट से दूर हो गई। क्या अगस्त ऋषि अपने आप ही चले गए? हाँ, उस समय में एक बात थी, एक बात कहना भूल गया। अगस्त ऋषि ने कहा कि अच्छा, आप मुझे जाने के लिए तो कहते हो, भगवान विष्णु की अगस्त की बात हुई, मुझे जल पीना, जल तो पीने देते आप। भगवान विष्णु का जल आज नहीं पिलाऊंगा तो कृष्णावतार में पिलाऊंगा, कृष्णावतार में जल पिलाऊंगा, इतना जल पिलाऊंगा कि इंद्र अपना सारा दल उड़ेल देगा आपके लिए। तो तब तक क्या करो, तब तक बैठ करके आप मेरा स्मरण करो, मेरा स्मरण करो, आपको जल तभी पिलाऊंगा। आज आपने पार्वती जी को इतना कष्ट दिया, अब हम आपको प्यासा मारेंगे, हम कृष्णावतार में आएंगे। और जब इंद्र वहां पर गोवर्धन, हम गोवर्धन पर्वत को धारण करेंगे, सारा पानी बहेगा, सारा ब्रज है वो पानी से भर जाएगा, उस पानी को तत्काल सोखने की बड़ी जरूरत रहेगी, तो आप आकर के गुप्त रूप से उसको पी लेना। तो कृष्णावतार में जाकर के अगस्त ऋषि को जल मिला। इस प्रकार से भगवान के नाम के प्रभाव से ये पार्वती जी का संकट दूर किया भगवान शंकर ने। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनुभूप। और सनकादि ऋषियों के विषय में तो बड़ी विचित्र बात आती है। इनके मुख के ऊपर सदा ही नाम रहता था, नाम हरि शरणम जो कीर्तन है वो सनकादिकों के मुखों पर रहता था। इसी कारण से वैकुंठ में जाकर के भी उन्होंने जय और विजय को शाप दिया और भगवान सुनते रहे। भगवान ने कहा कि एक चीज हम आपसे मांगते हैं कि 3 जन्म के बाद फिर ये यहीं आने चाहिए, हमारे द्वारा 3 बार मारे जाए फिर यहीं आने चाहिए। ये भगवान ने उनसे स्वीकृति करवाई तब वैकुंठ में आए, नहीं आ सकते। ऐसे सुखदेव जी महाराज है, धर्म स्वरूप सुखदेव जी महाराज, भीष्म जी, सबकी नाम के प्रभाव से क्या क्या उनकी स्थितियां हुई, ये सब प्रसंग इसमें बड़े विस्तार के साथ आता है। श्रीमन्नारायण नाम